अरुणिमा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि पार्टी में वो अपनी माँ से मिलने वाली थी। अरुणिमा को नहीं पता था कि इस पार्टी में और कौन कौन आ रहा है और उसे कुछ जानने में दिलचस्पी भी नहीं थी। वो तो बस इस बात से खुश थी कि वो अपनी माँ को देख सकेगी, उन्हें गले लगा सकेगी। उसने तय कर लिया था कि अपनी माँ को सब कुछ बताएगी कि आस्तिक उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। 2 हफ्ते पूरे हो चुके थे और आज रात आस्तिक फिर से अरुणिमा के पास आएगा, क्योंकि सुबह से ही आस्तिक इस बात का हिंट दिए जा रहा है कि आज की रात उसके लिए बहुत भारी होने वाली है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर सके, अरुणिमा यहाँ से चली जाएगी। उसने सोच लिया था कि वो अपनी माँ के साथ यहाँ से चली जाएगी। उसकी माँ ज़रूर उसे इस नर्क से बचा लेगी। अरुणिमा ने आज नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो शीशे के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पहले से ठीक लग रहा था। वैसे तो उसे मेकअप की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी उसने थोड़ा सा मेकअप लगाया था। अरुणिमा के सामने फिर से गहनों का ढेर रखा हुआ था, जिन्हें देखकर वो यही सोच रही थी, मुझे ये सब पहनने होंगे, लेकिन ये सब तो बहुत भारी हैं। एक काम करती हूँ, बस एक हल्का सा नेकलेस पहन लेती हूँ और कानों में बालियाँ, और बाकी मैं कुछ नहीं पहनूंगी। इतना सब लेकर मैं पार्टी में चलूंगी कैसे? अरुणिमा यही सोचते हुए अपने गहनों के सेट में से एक चोकर का सेट निकालती है और उसे पहनती है, और एक हल्का सा झुमका। जैसे ही वो दूसरे कान के झुमके पहनने वाली होती है, उसका झुमका उसके हाथ से छूटकर नीचे ज़मीन में गिर जाता है। अरुणिमा अपने नीचे आसपास उस झुमके को देख रही थी, लेकिन वो झुमका उसे नहीं मिला। उसने हैरानी से पीछे की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। झुमका जहाँ गिरा था, ठीक उसके सामने आस्तिक खड़ा था। आस्तिक धीरे से नीचे एक घुटने के बल झुककर वो झुमका उठा लेता है। अरुणिमा का शरीर कांपने लगता है। आस्तिक का शरीर ऊंचा, लंबा, कड़क है और अरुणिमा उसके सामने किसी छोटे बच्चों की तरह प्रतीत होती है। आस्तिक अपने एक हाथ में उसका झुमका लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था और अरुणिमा को ऐसा लग रहा था जैसे कि शेर अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा है। अरुणिमा डरी हुई नज़रों से आस्तिक को देखती है तो आस्तिक अपने एक हाथ से अरुणिमा के कंधे को पकड़ता है और उसे वापस आईने की तरफ कर देता है। अरुणिमा हैरान नज़रों से आस्तिक को देख रही थी और उसका डर उसके चेहरे पर घबराहट बन के दिख भी रहा था। आस्तिक ने धीरे से अरुणिमा के बालों को पीछे किया और उसके कान में झुमका पहनाते हुए कहा, मेरी बात याद है ना? मेरे अलावा तुम्हारी नज़रें और किसी के ऊपर नहीं जानी चाहिए। अरुणिमा टेढ़ी नज़रों से आस्तिक को देखने लगी और आस्तिक ने वहां रखे गहनों में से एक बड़ा भारी सेट उठाकर अरुणिमा के बले में पहनते हुए कहा, पार्टी में मेरे साथ ही खड़ी रहना, खबरदार जो अपने मन से कहीं जाने की सोची तो। अरुणिमा का पूरा शरीर धीरे धीरे कांपने लगा था। वैसे तो आस्तिक के चेहरे पर मुस्कान थी, पर यह कोई फ्रेंडली मुस्कान नहीं थी। वो खतरनाक तरीके से धीरे धीरे मुस्कुराते हुए एक एक गहना उठा रहा था और अरुणिमा को पहनाते हुए कहता है, अगर मैंने तुम्हें किसी की तरफ देखा पाया या फिर तुमने किसी की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो याद रखना, तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम अगली बार से चलने लायक नहीं रहोगी। अरुणिमा डर से उसकी ओर देख रही थी। आस्तिक ने अपनी एक उंगली उठाई और उसके होंठों पर फहराने लगा। आस्तिक का स्पर्श अरुणिमा के अंदर तक डर की लहर को पैदा कर रहा था। अचानक से आस्तिक ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अरुणिमा आस्तिक से दूर होना चाहती थी, लेकिन आस्तिक उसे जबरदस्ती किस कर रहा था। अरुणिमा ने आस्तिक के कंधे पर हाथ रख उसे अपने से अलग करना चाहा, लेकिन आस्तिक की किस इतना हार्ड थी कि अरुणिमा की चीख निकल गई। अरुणिमा के होंठ जो अभी तक लाली नहीं थी, वो सुर्ख लाल हो गए थे। आस्तिक ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अरुणिमा के गर्दन पर अपनी उंगलियां फहराते हुए कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, 2 हफ्ते हो गए मैंने अपना शिकार नहीं खाया है, आज रात तैयार रहना। अरुणिमा की इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आस्तिक को देख सके और आस्तिक ने अरुणिमा के गर्दन पर अपने होंठ रख उसे काटना शुरू किया। अरुणिमा धीरे धीरे दर्द से तड़पने लगी और छटपटाने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। आस्तिक रुक जाता है और गुस्से में दरवाजे की तरफ देखने लगता है। उसने चिल्लाती और गरजती हुई आवाज में कहा, मैं बिजी हूँ, और फिर से वो अरुणिमा के गर्दन को चूमने लगा। पर तभी बाहर से किसी सर्वेंट ने कहा, राजा साहब, रानी साहिबा का परिवार यहाँ आ चुका है। जैसे ही आस्तिक ने यह सुना, उसने अरुणिमा को छोड़ दिया और अरुणिमा ने राहत की सांस ली। और ये सुनते ही उसके मन सुकून से भर गया कि अब उसका परिवार यहाँ पर है और वो उनके साथ यहाँ से चली जाएगी और जल्दी ही इस नर्क से आज़ाद हो जाएगी। पर इससे पहले कि अरुणिमा दरवाजे की तरफ बढ़ पाती, आस्तिक ने उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे अपने करीब कर लिया। अरुणिमा डर से फिर से आस्तिक को देखने लगी तो आस्तिक अरुणिमा के बालों को सही करते हुए कहता है, जाओ अपनी माँ से मिल लो, मुझे पता है तुम्हारे पास अपनी माँ को बताने के लिए बहुत कुछ है। इतना कहकर आस्तिक ने अरुणिमा को छोड़ दिया और कमरे से बाहर चला गया। लेकिन अरुणिमा हैरान रह गई थी, आस्तिक ने उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया और अपने माँ से मिलने के लिए भी कह दिया। अरुणिमा जल्दी से शीशे के पास जाती है और टिश्यू पेपर से खुद के होंठों पर आस्तिक के कहर को सही करती है। एक बार खुद को शीशे में देखने के बाद अरुणिमा जल्दी से कमरे से निकलती है और सीढ़ियों की तरफ आती है। नीचे सीढ़ियों के पास पृथ्वी सोफे पर बैठा हुआ था और सामने शारदा जी, मिश्री, ज्योति और रजत बैठे हुए थे। उन सबको देखकर अरुणिमा को ऐसा लग रहा था जैसे कि कितने वर्षों के बाद वो अपने परिवार से मिली है। अरुणिमा का मन रोने का कर रहा था और यहाँ तक कि उसकी आंखों में नमी भी आ गई थी, लेकिन वो अपने परिवार के सामने रोकर अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। अरुणिमा तेज कदमों से सीढ़ियों से उतरती है और शारदा जी को पुकारती हुई कहती है, माँ आप आ गई। शारदा जी और बाकी सब लोग अरुणिमा को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। शारदा जी जल्दी से खड़ी होती हैं और अरुणिमा सीधे जाकर अपनी माँ के गले लग जाती हैं। इस समय अरुणिमा का मन फूट फूट कर रोने को कर रहा था। उसका मन बहुत भारी था, वो अपनी माँ को बहुत कस के पकड़े हुए थी। शारदा जी अरुणिमा की हरकत नोट कर रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत मुश्किल से अरुणिमा को खुद से अलग किया और कहा, अरु क्या कर रही है, ऐसे बच्चों की तरह कौन आकर लिपटता है। तभी मिश्री अरुणिमा के पास आती है और खुश होते हुए कहती है, दीदी तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो।